बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के निकटता में रह करके आनंदित हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन नए श्रोता मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों कुरिन्थियों की पत्री से अपने अध्ययन को आरंभ किए हैं। पिछले अध्ययन में हमने इसकी पृष्ठभूमि को देखा था कि कुरिन्थ की नगर किस स्थान पर थी और वहां पर किस प्रकार के लोग थे और पौलुस किस रीति से कुरिन्थ वासियों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर के गया। मित्रों, हम देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थ वासियों को, जो पवित्र जन हैं, वरन समस्त पवित्र जनों को संबोधित करते हुए कहता है। तो आइए आज आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों की पत्री एक अध्याय उसका नौ पद। पहला कुरिन्थियों की पत्री एक अध्याय उसका नौ पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर सच्चा है और जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरे मित्रों, आप ध्यान दे रहे होंगे कि पत्री इस भाग में लगभग प्रत्येक पद में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, या हर एक पद में तो नहीं, परंतु मैं नौ पदों में नौ बार प्रभु यीशु मसीह का संदर्भ देखता हूँ। अतः स्पष्ट है कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर अधिक बल दे रहा है। मेरे मित्रों, यहाँ प्रभु यीशु के नाम का विस्तृत रूप प्रदान किया गया है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। जी हाँ, इससे यीशु की पहचान के चार रूप प्रकट होते हैं। अतः भ्रम की कोई भी संभावना ही नहीं रह जाती है। वह दो महान बातें कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अर्थात परमेश्वर सच्चा है। मनुष्य सदा सच्चा नहीं रहता, विश्वासी भी सदा सच्चे नहीं रहते हैं, परंतु परमेश्वर सदैव सच्चा है। आगे हम देखते हैं कि जिसने तुमको बुलाया है, जी हाँ, यह मसीह यीशु है या यह मसीह यीशु में एक सर्वोच्च बुलाहट है। हमें उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया गया है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो महत्वपूर्ण शब्द है वह है संगति। यह शब्द यूनानी भाषा का कोइनोनिया शब्द से आया है, जिसे पौलुस बार बार काम में लेता है। इस शब्द के अनेक अर्थ हैं। इसका अर्थ आज के विचार में संगति है और इसका अर्थ दान भी होता है। रोमियो के पत्र 15 अध्याय के 26 पद में वह यरूशलेम के गरीब पवित्र जनों के लिए दान के स्थान पर यही शब्द कोइनोनिया को काम में लेता है। यहाँ इस शब्द का अर्थ है दान। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय के 16 पद में कोइनोनिया शब्द का अर्थ है प्रभु भोज, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। क्या मसीह के लहू की सहभागिता अर्थात कोइनोनिया नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता कोइनोनिया नहीं? कोइनोनिया का अर्थ साझेदारी भी होता है, और मेरे विचार में इस पद में इसका उपयोग इसी संदर्भ में है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति अर्थात कोइनोनिया में बुलाया है। मेरे प्रियो, यह निस्संदेह हमें दिए गए महान सौभाग्यों में से एक है। यदि आप मसीह में हैं, यदि आपने उसके पास आकर उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो आप उसके साथ साझेदारी में हैं। वह हमारा साझेदार बनने के लिए तैयार है। अतः इसका अर्थ है मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध है। मेरे प्रियो, साझेदारी अनेक प्रकार की होती है। व्यापार में साझेदारी होती है। मैं दो ऐसे मनुष्यों को जानता हूं जो व्यापार में साझेदार हैं। वे सेना में सेवा के समय मित्र थे और सेवानिवृत्त अर्थात सेवा समाप्त होने के बाद उन्होंने व्यापार का काम आरंभ किया। उनमें से एक ने मसीह को ग्रहण किया और दूसरे ने नहीं। उस दिन से उनकी साझेदारी आनंद से पूर्ण नहीं रही। जी हाँ, उनका व्यापार बड़ा था जिसमें निवेश भी बड़ा था, अतः वे साझेदारी को तोड़ने नहीं पाए। अब वह साझेदारी आनंद की नहीं थी। मेरे प्रियो, विवाह में भी प्रेमी संबंधों की साझेदारी होती है। यह एक घनिष्ठ एवं निकटतम संगति होती है। जैसे हम पुराने नियम का एक संदर्भ पढ़कर हमें हंसी भी आती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसे लिखते समय परमेश्वर के मन में पति और उसकी पत्नी रहे होंगे। उसने अन्य बातों के साथ साथ की बैल और गधे को एक ही जुए में नहीं जोता जा सकता, उन्हें एक साथ हल नहीं चलाना है। अतः विवाह में मैंने अनेक बार बैल और गधे को एक साथ देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक साझेदारी नहीं है। मेरे मित्रों, प्रभु ईश्वर के साथ साझेदारी का अर्थ क्या है? एक अर्थ तो यह है कि आप व्यापार में उसके साथ स्वामित्व रखते हैं। मेरा सब कुछ मसीह ईश्वर का है। उस पर मसीह ईश्वर का उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। यही कारण है कि वह मेरी संपत्ति में रुचि रखता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। एक समय था जब मैं सोचता था कि मेरी कुछ संपदा ऐसी है जिसकी प्रभु को चिंता नहीं है। मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब मैं अपनी संपदा के संबंध में स्वार्थी था। मैं अपने तक ही सीमित था। परंतु अब जबकि मेरे पास अधिक कुछ नहीं है, जब वह मेरा साझेदार है, हमारा व्यापार तो बड़ा नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब उसी का है। मेरे मित्रों, मेरे पास दो पहिए की एक गाड़ी है और जब मैं उसे लेकर के बाहर निकलता हूँ तब भी वह मेरी ही थी, परंतु मैंने प्रभु यीशु से कहा है कि वह उसकी भी है। प्रसंगवश वह मेरे साथ उस गाड़ी में बहुत घुमा है। मेरे प्रियो, मेरे पास जो भी है वह उसका भी है। मैं उसे मेरे घर के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं उसे संभालने के लिए धन्यवाद देता हूँ। परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वह उसका भी है। मेरा सब कुछ उसका ही है। मेरे मित्रों, विवाह की साझेदारी के अनेक अर्थ हैं। इसका एक अर्थ है दोनों पक्षों की रुचियां। मैं प्रभु यीशु के साथ ऐसी साझेदारी में हूँ। इसका अर्थ है कि मसीह मेरी चिंता करता है और मैं उसके बारे में सोचता हूँ। यह बहुत ऊंची बात है। हम में से एक दूसरे के लिए मन में भक्ति भाव भी है। उसके संसाधन मेरे हैं और मेरे संसाधन उसके हैं। उसे मुझसे तो अधिक प्राप्ति नहीं होती है, परंतु वह मेरा स्वामी है। मैंने अपनी देह उसे समर्पित कर दी है। इसके कारण मुझे अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, जो मेरे कहीं भी जाने और कोई काम करने के संबंध में होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कभी कभी धूम्रपान करता था, लेकिन जब मुझे यह बोध हुआ कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर ही नहीं, मैं मसीह का हूँ और मसीह मेरा है, तो मैं उसे सर्वोत्तम देह प्रदान करना चाहता था। उसी समय मैंने सारी बातों को त्याग दिया जो उचित नहीं है। मेरे प्रश्न का यह उत्तर था, क्या आप देखते हैं कि हमारे निर्णय, क्या मैं यह करने का साहस करूं या क्या मुझे यह करना चाहिए आदि प्रश्नों से कहीं अधिक उच्च कोटि के होते हैं। हम मसीह यीशु के हैं और मसीह यीशु मेरा है। मेरे मित्रों, कई बार हम चाहते हैं कि हम इन धूम्रपान की बातों से छुटकारा पाएं, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते हैं। कारण है कि हम यीशु को सब कुछ नहीं सौंपते हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि प्रेम की साझेदारी में एक दूसरे की सेवा भी है। परमेश्वर हमारी दुर्बलता के साथ तालमेल बैठाता है। मुझे उसकी विनम्रता की आवश्यकता है और मैं उसका सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। इस संबंध में धर्मशास्त्र का एक पद है जो मेरे विचार में गलत अनुवाद किया गया है। यह पद है यशाया नबी की पुस्तक 63 अध्याय उसका 9 पद। लिखा है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। इसका एक अनुवाद इस प्रकार भी है, उनके सारे कष्टों में वह आहत न हुआ। मुझे यह अधिक अच्छा लगता है। जी हाँ, यह अधिक अर्थपूर्ण भी है। इसका अर्थ यह है कि जब मैं ठोकर खाकर गिरता हूँ, तब वह ठोकर खाकर नहीं गिरता। वह मेरे ठोकर खाने से मेरी रक्षा करता है। मेरे अज्ञान और मेरी दुर्बलता के साथ वह निर्वाह करता है। यद्यपि वह मेरे इन दुर्बलताओं के साथ निर्वाह करता है, परंतु वह दुर्बल नहीं हो जाता। मैंने एक प्रचारक को प्रचार करते हुए सुना, जब आप अज्ञानवश नहीं जानते हुए संकट में पड़ जाते हैं या आप परिस्थितियों के कारण संकट में पड़ जाते हैं, तब वह आपको उबार लेता है, अर्थात निकाल लेता है। परंतु यदि आप जानबूझकर और मूर्खता के कारण पाप में गिर जाते हैं, तब वह आपकी सहायता की अपेक्षा आपको अकेला छोड़ देता है। मेरे प्रियो, मैं यहाँ हूँ कि आपको बताऊं कि यह मेरा अनुभव नहीं है। मैं अनेक बड़ी बड़ी गलतियां की है। मैंने ठोकर खाई है और गिरा हूँ। अनेक बार मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, परंतु मेरे प्रभु ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। वह सदा सहायता प्रदान करता रहा है। उसने मेरी दुर्बलताओं में निर्वाह किया है। मेरे मित्रों, यह कैसी अद्भुत बात है। जी हाँ, मसीह यीशु के साथ साझेदारी जीवन की समस्याओं का समाधान है। पद 9 में पौलुस के अभिवादन का अंत है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 58 पद तक यह संपूर्ण पत्र एक वृहद और स्पष्ट वाक्य है। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जी हाँ, ध्यान दे, इसलिए इस अद्भुत पत्र को समायोजित करके पद 9 पर पहुंचता है और मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर कर सकता हूँ। जी हाँ, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरे मित्रों, मुझे इस तथ्य को सीखने में बहुत समय लगा और सच तो यह है कि इसे सीखते सीखते मैं बहुत समय बिता चुका। मैं उसे अपना साझेदार बनाए बढ़ा चला जा रहा हूँ। मैं आज भी आज की सब समस्याओं का उसको साझेदारी में सामना करता हूँ। मैं उस पर निर्भर कर सकता हूँ। मैं उसकी ओर निहार सकता हूँ। वह इन सब का अभिन्न अंग है। मेरे प्रियो, यह जीवन की समस्याओं और निराशाओं का समाधान है। यहाँ आकर प्रस्तावना समाप्त होती है जो अभिवादन और धन्यवाद है। पत्र का मुख्य भाग कुरिन्थ की कलीसिया की स्थिति से संबंधित है। वहां वास्तव में समस्याएं थी, जैसा हम इस पत्र में देखेंगे। मित्रों, हम आगे देखते हैं विभाजन और पंथ निष्ठा। पौलुस के इस प्रथम पत्र कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखे गए पत्र में पद 10 एक नया भाग आरंभ करती है। वह कुरुंत की कलीसिया की प्रमुख समस्या का उल्लेख करता है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि उनकी समस्याएं परिचित सी जान पड़ती है। मैं आज ऐसी कलीसियाओं को नहीं जानता जिसमें समस्या ना हो। उनकी अधिकांश समस्याएं वैसी ही है जैसे कुरुंत के विश्वासियों में थी। आइए देखें, क्रूसित मसीह को केंद्र में रखने के कारण विभाजन का निवारण होता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 1:10 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ फिर वह प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है। इस पत्री में मसीह के प्रभुत्व पर बल दिया गया है। हम आज उसकी प्रभुता के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं परंतु देखते बहुत कम है। जी हाँ, यही कारण है कि कलीसिया और व्यक्तिगत विश्वासियों के साथ गंभीर समस्याएं हैं। मसीह की प्रभुता के विषय चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। क्या वह आपका प्रभु है? क्या आपने उसे अपना उद्धारकर्ता, प्रभु एवं स्वामी अपनाया है? लिखा है, तुम सब एक ही बात कहो। इसका अर्थ यह नहीं कि सब एक से शब्दों का प्रयोग करें। इसका अर्थ यह है कि विश्वासी एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार ना रहें, झगड़ा ना करें, घृणा ना करें, परंतु एक दूसरे से प्रेम रखें। विभाजन का मूल शब्द है शिश्मा। उनमें दरार ना हो, कलीसिया भंग ना हो, जिसका कारण है कलह, पीठ पीछे बुराई करना, आलोचना करना, घृणा, नफरत करना, मन की कड़वाहट। मित्रों मुझ पर विश्वास करें, मैं आज की कलीसिया में अधिकतर इन्हीं बातों को देखता हूँ। यदि मसीह यीशु आपका साझेदार है तो आपके जीवन में यह सब नहीं होगा। लिखा है, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन क्या होता है? यह मसीह का मन है। देखिए फिलिपियों के पत्री 2:5-8 में जहां पर इस बात के बारे हमें बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 1:11 में, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ झगड़े का मूल शब्द एरिस। एरिस कलह और झगड़े की देवी थी। कुरिन्थ की कलीसिया में झगड़े, कलह, विभाजन, वाद विवाद आदि पाए जाते थे। पौलुस को यह समाचार सीधा प्राप्त हुआ और वह समाचार लेने वाले का नाम भी लिखता है, खलोए। मेरे मित्रों, यदि आप किसी पर दोष लगाना चाहते हैं तो आप अपना नाम बताएं, जैसे खलोए ने किया था। जब मैंने आरंभ में प्रभु की सेवा संभाली तब एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आपको यहाँ की परिस्थिति बताना चाहता हूँ। उसने मुझे एक पुरुष के बारे में कुछ बताया और मेरा विश्वास कीजिए कि वह बात अच्छी नहीं थी। वह चाहता था कि मैं इस विषय में कुछ करूं। उसने कहा, आपको यह विषय समिति के समक्ष रखना चाहिए। यदि वे इसके लिए निर्णय न ले पाए तो आप इसे कलीसिया के समक्ष रखिए। मैंने कहा, सर्वथा सही है, ऐसा ही होना चाहिए। आप किस दिन रात में आ सकते हैं? उसने कहा, ओह, मैं आना नहीं चाहता। आप प्रभु के सेवक हैं और आपको इसके विषय में कुछ करना चाहिए। मैंने कहा, आपका कहना सही है, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ही हूं जो मैं करूंगा, तथापि आपको वहां उपस्थित होकर यह मुद्दा उठाना होगा। उसने कहा, ओह, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अतः मैंने उससे कहा, यदि आप मुद्दे पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हम उसे भूल जाएंगे। और हम वास्तव में उस विषय को भूल गए क्योंकि उस पर उसका नाम नहीं था। मेरे प्रियो, हमें कुरिन्थ के खलोए को सराहना चाहिए क्योंकि उसने जीवों का त्यों समाचार सुनाया था। आज कलीसियाओं में लोग समस्याओं को लेकर के आते हैं लेकिन अपना नाम नहीं रखना चाहते। कहने का तात्पर्य है कि वे उसका हल चाहते हैं लेकिन सामने नहीं आते। वह खुलकर सामने आया था और कहा, हमारी कलीसिया में समस्याएं हैं, घोर समस्याएं हैं और उनका समाधान अति आवश्यक है। और यह सिर्फ खलोए था। मेरे मित्रों, कलीसिया में पाप हो तो वह एक कैंसर के समान है, उसका निवारण आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो आप जानते हैं कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि वह कह रहा है, हमें उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें भाव प्रवण भी नहीं होना है। हम समस्या खड़ी करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपका मन शांत हो। अतः डॉक्टर कहता है कि इस जगह पर मैं कुछ पाउडर डालूंगा और सब ठीक हो जाएगा। मेरे मित्रों, आप उसके पास से सुगंध को प्राप्त करते हैं, परंतु कैंसर वह भर नहीं सकता या मर नहीं सकता है। आपको कैंसर का निवारण करना ही होगा, एक पाउडर मात्र से नहीं। इसी प्रकार आपको कलीसिया में उत्पन्न समस्याओं का भी निवारण करना होगा। हाय उस मनुष्य पर जो उसे उजागर करता है, परंतु यदि वह ऐसा करे तो कलीसिया की हानि होगी। इसलिए आइए हम कलीसिया की उस कैंसर को प्रभु के पास लाएं, ताकि कलीसिया में शांति हो। मेरे प्रियो, कुरिन्थ की कलीसिया की समस्या यह भी थी कि उसमें शिशु अवस्था में विश्वासी थे। शिशु, जैसा आप जानते हैं, सामान्यतः बहुत चीखते और चिल्लाते हैं। मेरी एक कलीसिया में शिशुओं के लिए नर्सरी भी है, जिसे हम चीखने का कक्ष भी कहते हैं। मैंने यह सीखा है कि कुछ कलीसियाओं में संपूर्ण आराधनालय में ही चीखने का कक्ष है, क्योंकि वह चीखते हुए शिशु विश्वासी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी वे प्रभु में बढ़े नहीं हैं। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलुस का, कोई कैफा का और कोई मसीह का कहता है। जी हाँ, कलीसिया में विभाजन का कारण था अलग अलग अगुओं का अनुसरण करना। उन्होंने अलग अलग अगुओं के नाम से दल बना लिए थे। एक दल में पौलुस के घमंडी अनुयायी थे, कुछ विश्वासी शमौन पत्रस के निष्ठावान थे, तो कुछ कैफा की उपासना पद्धति आरंभ कर रहे थे। हम पौलुस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वह बुद्धिमान मनुष्य था, साहसी पुरुष था, परंतु शारीरिक रूप से आकर्षक व्यक्तित्व नहीं था। शमौन पत्रस जोशीला व्यक्ति था। आरंभ में तो वह दुर्बल था, परंतु वह सुसमाचार का कठोर प्रचारक था। अपोलोस प्रेरितीय कलीसिया का एक महान प्रचारक था। वह प्रेरित नहीं था और उसे अधिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, परंतु वह एक महान प्रचारक था। मेरे विचार में वह उस युग का किसी प्रकार से बिली ग्राहम से कम ना था। इन तीनों अगुओं के व्यक्तित्व प्रभावित थे, परंतु उन्होंने विभाजन नहीं किया था। वे एक साथ विश्वास का यत्न करते थे, वे आत्मा की एकता बनाए हुए थे, वे सब मसीह यीशु को प्रतिष्ठित करते थे। कलीसिया में विभाजन के दोषी कलीसिया के सदस्य थे। मेरे प्रियो, एक दल कहता था, ओह, हम भाई पौलुस से प्रेम करते हैं क्योंकि वह बहुत आत्मिक है। दूसरा दल कहता था कि हमें शमौन पत्रस पसंद है क्योंकि वह मंच ठोक कर प्रचार करता है और सुसमाचार से परिपूर्ण है। एक और दल था जो कहता था, हमें तो अपोलुस अच्छा लगता है क्योंकि वह ऊंचाइयां नापता है और जन समूह को मोहित कर लेता है। वे एक बात को भूल रहे थे कि तीनों ही परमेश्वर के जन थे। पौलुस यही बात उन्हें लिखने जा रहा था और वह उन्हें समझाना चाहता था कि कलीसिया में विभाजन और दरार के समाधान के लिए आवश्यक था कि मसीह को केंद्र में रखा जाए। मेरे मित्रों, जब तक स्त्री पुरुष मसीह के पास ना आए, तब तक समाधान नहीं होगा। अब इन तीनों दलों के अतिरिक्त एक और दल था जो कहता था, हम मसीह के हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने मसीह को प्राथमिकता ही दी थी, परंतु वह ढोंगियों का दल था। मेरा अपना विचार है कि वह दल सबसे अधिक घातक था। उन्होंने मसीह को ही पूजा का साधन बना लिया था। उनका दल अलग था, जिसमें अन्य विश्वासियों का प्रवेश वर्जित था। वे आत्मिक घमंडी थे, जैसा कि आज हम बहुतों को देखते हैं। क्या आपको इस सत्य का बोध है कि आज कलीसिया भीतर से नष्ट हो चुकी है? समस्याएं बाहर से नहीं है। असंख्य कलीसियाएं मुक्त विचारवादी प्रचारकों द्वारा वर्षों पूर्व नष्ट की जा चुकी हैं। रविवार रात्रि या साप्ताहिक आराधनाओं में जाकर उपस्थित होकर के देखिए, अनेक कलीसियाएं प्रचार मंच पर खड़े होने वाले प्रचारकों द्वारा नष्ट की जा चुकी हैं। मित्रों, यदि प्रचारक विश्वास में दृढ़ है तो आपको बेंच में बैठे उपद्रवी दिखाई देंगे। प्रचार मंच ही है जहां से कलह उत्पन्न होते हैं। इसके कारण बहुत से लोग परमेश्वर की निकटता से दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का दास पौलुस हमें इस बात को बताना चाहता है कि हम कलीसिया को अर्थात मसीह को नहीं बांट सकते हैं। हमारा केंद्र मसीह हो तो हमारी सहभागिता और हमारे प्रेम बने रहेंगे। जी हाँ, यह मूर्खता की बात लगती है, परंतु कलीसिया में कलह और झगड़े होते ही हैं। कुरिन्थ की कलीसिया में भी लोग यही कर रहे थे। आज हमें अपने कलीसियाओं को देखने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार अपनी कलीसियाओं में रहते हैं। मेरे प्रियो, मेरा और आपका केंद्र क्या है? आइए आज हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लें और अपनी कलीसियाओं की समस्याओं का समाधान परमेश्वर के निकटता में करें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को जान लिया है कि हमें कलीसियाओं में सुधार की आवश्यकता है। जी हाँ, आइए आज हम सब परमेश्वर के निकटता में निर्णय लें और उसकी सहायता मांगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तू है पवित्र यहोवा शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तू पानी उठी, तेरी आज्ञा से आधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूँ, वो ही तो है मेरा खुदा। जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूँ।